शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चे खुदाई खिदमतगार हो। साथ में बाबा ने कहा तुम्हें सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार की विशेषता क्या होगी? बाबा ने कहा वो कम से कम 8 घंटा देही अभिमानी होकर रहे। अब जो 8 घंटा देही अभिमानी होकर रहेंगे तब वो जाकर के सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बन सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे भी हो और रॉयल स्टूडेंट भी हो। रॉयल बच्चों की चाल चलन भी रॉयल होनी चाहिए। तीसरी बात बाबा ने कही तुम बच्चे वनवा में हो, वनवास में हो, चाहे बच्चा है बूढ़ा है जवान है सबके सब वनवा में है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत सिंपल रहना है और बहुत ही साधारण रहना है। इसके लिए भी बाबा ने बच्चों का ध्यान खिंचवाया। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 7 जुलाई 2025। मुरली का मुख्य हरी मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हें बाप टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हें बाप टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत अर्थात सेवा करनी है। आज का प्रश्न है जो अपने को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उसका उत्तर है उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म वास्तुल देहधारी की याद नहीं रही। स्थूल रूप में नहीं है तो सूक्ष्म में भी नहीं होगी। तो उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म वास्तुल देहधारी की याद नहीं रहेगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते, कौन सी सावधानी देते होंगे? पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठती हूँ तो अपने को आत्म समझ बाप के आगे बैठे हो। बाबा आकर के प्रश्न पूछते रहे आत्म समझ बाप के आगे बैठे हो, ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं और टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर वन बात है हम आत्मा है और बाप भी आत्मा है, बाप भी आत्मा, बाप भी टीचर है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना? ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कलप कलप ये सुनते हैं। कौन सी बात? हम बाबा के सामने टीचर के सामने सतगुरु के सामने हैं, वो एक ही है। तो बाबा कहते तुम कहेंगे हम तो कलप कलप ये बात सुनते हैं, तो बुद्धि में याद रहे ना। बाबू कहते बाबा हमने सुना है, लेकिन बाबा कहते एक सुनना एक याद रहना। तो बुद्धि में याद रहना, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। ये ज्ञान इस समय ही बाप तुम बच्चों को देते हैं। ऊंचते ऊंच है भगवान, ये ज्ञान तुम बच्चों को इस समय बाप द्वारा ही मिलता है। ऊंचते ऊंच है भगवान, वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? ज्ञान दिया बाबा ने, बाबा कहते क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी कि घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे? अब सबको ले जाएंगे, एक को तो नहीं ले जाएंगे ना, कितनों को ले जाएंगे? ये सब तुम जानते हो, मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सामने डायग्राम होते हैं, नक्शे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को तो नक्शों पर और फोटो पर समझाते हैं तो जल्दी समझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों सभी सभी आत्मा को जाना है। सचिव में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, ये इंग्लैंड है, ये है, फिर याद पड़ जाता है। आज सब थोड़ी जाएंगे, लेकिन पता है कि इंग्लैंड कहाँ है, फलाना कॉन्टिनेंट कहाँ है, फलाना देश कहाँ है, तो चित्रों से समझते ना। तो बाबा कहते सब याद पड़ जाता है। यहाँ भी ऐसे एक एक स्टूडेंट को समझाया जाता है। महिमा भी एक की है, शिवाय नामे ऊंचते ऊंच भगवान। रचयिता बाप घर का बड़ा होता। जो रचयिता होगा, लौकिक में भी जो रचयिता होता है वो घर का बड़ा होता है। रचयिता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के, और ये है सारे बेहद के घर का बाप। ये फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते तो साधारण तन में आता है। टीचर भी है लेकिन कैसे पढ़ाते? साधारण तन में आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते तुमको पढ़ाते तो है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो, कैसे स्टूडेंट हो बताओ? बाबा कहते हैं तुम स्टूडेंट भी हो, एक्यूरेट स्टूडेंट हो, या थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, कैसे स्टूडेंट हो कौन बताएगा? बाबा ने कहा तुम रॉयल स्टूडेंट हो। बाबा कहते हैं तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहती है मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ चाहिए ना, उन बिगड़ तो काम कैसे चल सकता, और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए। बड़ा छोटा होगा तो समझा नहीं सकेगा, छोटे का कौन सुनेगा, जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टिव है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बोल न सके, बुजुर्ग को ही शोभता है। श्री कृष्ण बच्चे तो नहीं कहेगा ना, तो बाबा कहते बुजुर्ग को ही शोभता है। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा बाबा कहेंगे, बच्चे को तो प्यार करते, उसको थोड़ी बाबा कहेंगे। तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कहाँ भी बैठे हो, उनकी बुद्धि में बाप भी याद रहता है, टीचर भी याद रहता है। उनको तो बाप अलग है, टीचर अलग है, और गुरु अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर और गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है। अब शिव बाबा क्या कहते हैं? ये ब्रह्मा बाबा भी क्या है, स्टूडेंट है, तो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु है, ये बाबा भी तो स्टूडेंट है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत खुशी होती थी, मैं भी पढ़ रहा हूँ, शिव बाबा जो पढ़ा रहे मैं पढ़, लेकिन मैंने अपना रथ बाबा को दिया तो बाबा को नशा भी रहता था, खुशी भी रहती थी, और उनको बाबा को पता था कि इसके रिटर्न में शिव बाबा बहुत कुछ देने वाले, और शिव बाबा को भी पक्का था कि इसका रथ लोन लिया तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो बाबा कहती है ये बाबा भी तो स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं है, ये भी तुम्हारे मौफिक ही हैं, इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बाबा जो ज्ञान देते हैं शिव बाबा इनके द्वारा, पहले ब्रह्मा बाबा सुनते, लेकिन सुनते तो वही है ना, जो ब्रह्मा बाबा ने सुना वही तुम बच्चे सुनते हो। बलिहारी है एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं, ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म वस्तुओं देहधारियों को भूल जाओ। शिव बाबा ने भी वही कहा और ब्रह्मा बाबा भी वही कहते हैं, ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, पार्ट एक्टर्स बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं अनुभव करते ना। तो बाबा कहते ये बातें और कोई नहीं जानते, दुनिया भर में किसको भी पता नहीं, यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते। बाबा के बने ज्ञान की बातें सुनी और सब बातें समझ आते हैं, फिर सेवा में लग जाते हैं। ईश्वरीय खिदमत गार ठहरे ना, बाप भी आए हैं खिदमत करने, खिदमत अर्थात सेवा करने, पतितों को पावन बनाने। जिसने राज्य दिया उनको ही तो बुलाएंगे ना, बाबा को क्यों बुलाते हैं पावन बनाओ, क्योंकि उसी ने पावन बनाया, उसी ने राज्य दिया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं, दुनिया में ये किसको पता नहीं, तो सब भारतवासी एक धर्म के हैं। भूल चुके हैं हमारा धर्म एक ही था, हम एक ही धर्म के थे। दुनिया में ये किसको पता नहीं कि सब भारतवासी तो एक धर्म के हैं, ये है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर के स्थापन करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल पहले मौफिक आए। दुनिया में लोग पुकार रहे हैं आओ आओ, और बच्चे क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। ये है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर के स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवताएं, क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते ना। तो बाबा कहते गाया भी जाता है ब्राह्मण देवी देवताएं, क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी दो कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ा कहेंगे, त्रेता भल नई दुनिया है लेकिन उसमें थोड़ा सा परसेंटेज में 2% कमी आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे, पहले पहले सचिव में है एकदम नई दुनिया, हित है पुरानी थे पुरानी दुनिया, फिर नए थे नई दुनिया में जाएंगे। वह पक्का करा रहे। अभी कहाँ बैठे हैं? पुरानी दुनिया में, फिर जाएंगे नई दुनिया में, फिर नई दुनिया में जाएंगे। अब हम नई दुनिया में जाते हैं तब तो बच्ची कहती है हम नरसिंह नारायण बनते। नई दुनिया में जाना है, पुरुषार्थ करना है, तब तो बाबा को कहते हैं बाबा हम नरसिंह नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते। बाबा कहते बनेंगे क्या नरसिंह नारायण, राजाओं का राजा बनेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे, पहले भर प्रिंस बनेंगे, लेकिन प्रिंस बनने की कथा सुनते ये तो नहीं कहते ना। कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते हैं। सत्य नारायण की कथा है, वे नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई भी जीवन कहानी क्या है वो नहीं जान। परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं, ज्ञान की बातें बहुत है ना। इसलिए क्या करना, बाबा हमेशा कहते थे कोई भी आए उसको बोलो 7 दिन का कोर्स करे और तब वो सब बातें समझ पाएंगे। 1 दिन में तो नहीं समझ पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं, 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तब तो थोड़े थोड़े लोगों को बाबा ने 7 रोज रखा, लेकिन बाद में बाबा ने कहा कि सब लोग यहाँ थोड़ी रह जाना 7 दिन, ज्ञान तो केवल 2 बार ही सुनाएंगे, सुबह और शाम। सुबह आओ शाम को आओ, 7 दिन का कोर्स करो। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु तो ऐसे नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। कहीं कहीं हम यहाँ रहे करें बाबा कितने, अपने घर में रहो आकर के सुनो, ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना बहुत कर ढेर आ जाएंगे। बहुत आते हैं जब शिविर में आते हैं, कई तो ऐसे हैं ज्ञान सुनने के बहाने आते हैं, और कई तो ऐसे हैं चलो चलो ज्ञान का नाम होगा थोड़ा घूम के आ जाएंगे, 3 दिन 5 दिन रहा आराम से घूम फिर के आ जाते। बाबा कहते ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत आ जाए। पहले पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, रात्रि भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है याद में रहने से सत्तो प्रधान बनने के। तो बाबा बता रहे हैं रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है, यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है याद में रहे सतो प्रधान बनने की। यहाँ तो सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो, ऐसे भी बहुत हैं जो धंधा धोरी करते फिर पहले पढ़ते भी हैं और जास्ती नौकरी कर भी सकते, पढ़ते भी हैं नौकरी भी करते हैं धंधा धोरी भी करते। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती नौकरी करने के लिए। यहाँ तो तुम पढ़ते हो और टीचर को भी याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो, तीनों इकट्ठे ही याद आ जाते। कभी बाबा कहते बाप समझ के याद करेंगे तो तीनों साथ में याद आएंगे, कभी टीचर समझ के याद करेंगे तो तीनों साथ में याद आ जाते। बाप टीचर सतगुरु तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए क्योंकि तीनों एक में है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाबा भी है और कौन है बोलो बोलो, टीचर भी है और गुरु भी है, ऊंचते ऊंच बाप है। पहले सीधा कहा बाबा, फिर बाबा कहते हैं कहो ऊंचते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, बाबा कहते जरूर वर्षा तो मिलेगा, लेकिन बाबा से क्या बात करनी, बाबा हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना भी जरूर होनी है। तुम सिर्फ पुरुषार्थ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, जाना है स्वर्ग में, लेकिन क्या करना है, पुरुषार्थ है ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है। वो लोग तो क्या क्या धर्म की बात करते ना, तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। तो आज क्या बोलेंगे, ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म क्या है, श्रीमत पर चल अलौकिक सेवा पर तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंचा काम करते हो, तुम्हारे जैसी अलौकिक सेवा कोई कर न सके, तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कार्य करते हो। तुम राजधानी भी स्थापन कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हैं, अलौकिक सेवा भी कर रहे हैं और राजधानी भी स्थापन कर रहे हो। वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके, तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। कौन सी बात में, अलौकिक सेवा में, इसमें बिजी रहना चाहिए। बाप भी तो बिजी है ना, बाबा किस बात में बिजी है बताओ, बाबा बच्चों को ज्ञान सुनाने में, संपन्न बनाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों की सेवा में बिजी है ना। तो बाबा कहते हैं बाप भी बिजी रहते हो ना, तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती। पहले गांव में पंचायत होती थी, कोई भी बात होती थी आपस में मिलकर के डिस्कस करके उसका समाधान करते थे। सिर्फ पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो, तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवानों वाच्य काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था, ये विश्व के मालिक कैसे बने। लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक कहते हैं, बाबा कहते हैं लेकिन वो बने कैसे ये तो कोई नहीं जानते ना, ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बुद्धि भी बड़ी विशाल चाहिए, इन बातों को, ज्ञान की बातों को समझने के लिए बुद्धि भी बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। कब थी, कैसे थी, बाबा कहते केवल तुम बच्चे ही समझा सकते, तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई का राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिष्ठ को ही कहते हैं, क्या कहते हैं बहिष्ठ को, गार्डन ऑफ अल्लाह। स्वर्ग के कई नाम हैं, उसको गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहते हैं, कई नाम है उसके। तो बाबा कहते बहिष्ठ को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी कहेंगे, बगीचे तो कई हैं, कई प्रकार के, चारों तरफ चले जाओ सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगे। तो बाबा कहते सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी तो चाहिए ना। कौन से बगीचे में, गार्डन ऑफ अल्लाह में कौन होंगे, देवी देवताएं, तो मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते, बाबा बता रहे देखो क्या है, नहीं तो क्या होता, बाहर के जो अट्रैक्शन है वो कभी कभी माया के कारण फस के कारण अट्रैक्शन के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते, तुम्हें इस समय बिल्कुल सिंपल होकर रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते, ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, दीदियों को देखा, दादी को देखा, कितना भी कुछ हो लेकिन सब बहुत ही सिंपल रीति से और रॉयल रीति से रहते थे। तो बाबा भी क्या कहते हैं, इस समय तुमको बहुत सिंपल रहना है। अभी तुम कहाँ जाते हो, ससुर घर, और ये है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल कौन मिला है, अब बताओ कौन मिला है, यहाँ तुम्हें डबल कौन है, माँ बाप है, और कौन मिला है, बाबा कहते डबल पिताएं मिले है, अब ब्रह्मा बाबा भी हैं और शिव बाबा है, तो बाप दादा हो गया ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच है, निराकार तो है ही ऊंचते ऊंच, लेकिन साकार बाबा जो है वह भी तो ऊंचते ऊंच है ना, वो थोड़ी कोई कम थोड़ी है, वो तो और ज्यादा कितना सबसे हाईएस्ट दिखाई देता है, वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, तुम्हारा है राजयोग, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बाबा कहते विष्णुपुरी को क्या नहीं कहेंगे, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पूरी नहीं होती, बच्चा तो खेलता है, सब उसको संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, जो बड़ा होता है वो सारे राज्य को संभालने वाला होता है, वही बड़ा काम करता है ना, तो वही सारा देखभाल करता है। इसे बाबा एक राज बता रहे हैं कि विष्णुपुरी कहेंगे लेकिन इसको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पूरी नहीं होती है, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूरी, तुम्हारा है राजयोग तो जरूर नर से नारायण बनेंगे, तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। अब क्या आज का टाइटल है, तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा भी सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं, किसको कहते हैं, पहले जवाब दे दिया, बताओ याद कर रिपीट करो, जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। बाबा भी सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। ऐसा नहीं कि 8 घंटा बन गए हैं लेकिन उनका पुरुषार्थ होगा, कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं और कर्मातीत अवस्था हो सकते। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए 8 घंटा कम से कम खुद आत्मअभिमानी रहे और कोई भी प्रकार का कर्म बंधन ना रहे तब जाकर के कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। कोई भी कर्म बंधन ना रहे तब कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करें तब जाके खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। नरसिंह नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए, कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा हमेशा कहते हैं अगर कर्म बंधन है तो सजा खा करके जाएंगे ना, तो बाबा कहते हैं कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बहुत कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है और थोड़ी कुछ करना है, सिर्फ बाप को याद करना। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत करनी पड़ती है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही तो नॉलेज है ना, जो बाप आकर के सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को योग आदि थोड़ी सिखलाते हैं, श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है, अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना। पहले बाबा ने कहा चित्र पर सहज समझाना, फिर कई बार पक्के हो जाते ना, तो बाबा कहते तुमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वह चित्र भी कितना रॉन्ग है, अभी तुमको कोई भी चित्र आदि को याद नहीं करना है। सब कुछ भूलो, कोई भी बुद्धि में ना आए। लाइन क्लियर चाहिए, क्या चाहिए? बाबा ने बच्चों को क्या बताया कि सब कुछ भूलो, कोई भी बुद्धि में ना आए, लाइन क्लियर चाहिए। ये है पढ़ाई का समय, दुनिया को भूल अपने को आत्म समझ और बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है और तुम कौन हो? पहले बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार, फिर बाबा ने कहा सच्चा सच्चा खिदमतगार बनना, फिर बाबा ने कहा तुम ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते, तो बाबा कहते तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। आप ऑलराउंडर दादी को जानते हैं ना, ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी जी की लौकिक माता जी, बाबा ने उनको ऑलराउंडर नाम दिया था। उनके अंदर हर प्रकार की विशेषता थी, कोई भी काम करना है कैसा भी काम होगा बाबा कहते थे, वो हर तरह का कर देती थी और बहुत एक्यूरेट करती थी, बहुत समझदारी से करती थी। तो बाबा ने उनको नाम ही दिया था ऑलराउंडर, तो सब उसको ऑलराउंडर दादी कहते थे। उसका अव्यक्त नाम कुछ और था, लेकिन उनको क्या कहते थे, ऑलराउंडर दादी। बहुत प्यार से सेवा करती, कोई भी आएगा कहेगी लाल आओ इधर आओ, उसकी बहुत खातरी भी करती थी और बहुत प्यार भी करती थी। तो बाबा कहते हैं देखो तुम भी तो ऑलराउंडर है, वह है हद के एक्टर्स और तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते, ये बेहद का कंप्लीट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। छोटे छोटे नाटक में तो कई परिवर्तन हो जाते ना, तो बाबा कहते हैं इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सत्युग से लेकर कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है, ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम ही नहीं। मूल वतन सूक्ष्म वतन और बाबा कहते हैं सृष्टि के चक्र से लेकर और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं है। मूल वतन सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। बाकी धर्म वाले बाबा कहते जब समय आएगा तब आएंगे, उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबर वार जैसे जैसे आए हैं वैसे फिर भी जाएंगे, हम और धर्मों का वर्णन क्या करेंगे? बाबा के तोड़ों का वर्णन करो, वो तो जैसा उनका पार्ट वो बजाएंगे ना, हम और धर्मों का वर्णन क्या करेंगे? तुमको तो सिर्फ एक बाप की याद में रहना है, चित्र आदि ये सब भूलकर एक बाप को याद करना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को याद करना। बाबा क्या कहते, केवल किसको करना है, एक बाप को याद करना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं, सिर्फ एक बाप को याद करना है। वह समझते परमात्मा लिंग है, अब लिंग समान कोई चीज कैसे हो सकती है, ये वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे, लिंग कैसे हो सकता है, कैसे ज्ञान सुनाए, वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे, क्या प्रेरणा से सुनाएंगे। ये सब ड्रामा में पहले से ही नून है, विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करती। बाबा कहते बच्चों से मिलना है, बच्चों से बात करना, तो कैसे करेंगे, बाबा के साथ सब संबंध है तो कैसे निभाएंगे, तो बाबा जरूर शरीर के द्वारा ही तो करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं, उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है, कल पहले जो आएंगे वही आते रहेंगे। जो कुछ भी पास हुआ है उसे क्या कहेंगे, ड्रामा। जो कुछ भी पास हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, जैसा था हूबहू रिपीट होगा। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है, बाबा कहते पुरानी बातों को याद नहीं करना है, फिर से जो ड्रामा में था पूरा हुआ, फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है, ऐसे नहीं। ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो जाएगा। कई कहते क्या करे, छोड़ दो, ड्रामा में होगा जो मिलना होगा मिल जाएगा। बाबा कहते फिर पद भी उतना ही मिलेगा, पुरुषार्थ तो करना है ना, तो ड्रामा में जो फिक्स है उसमें पुरुषार्थ का भी पार्ट भी फिक्स है। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम ही हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना चाहिए। अपने चार्ट को बाबा कहते ड्रामा पे, कई बच्चे तो इतने समझदार हैं, क्या कहते बस ड्रामा में होगा, ये ड्रामा पे छोड़ देते हैं और बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करना चाहिए, तो बाबा कहते हैं अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कई लिखते भी बहुत अच्छा है चार्ट, लेकिन उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, तो बाबा कहते नोट करो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता, बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का सन, बाबा के पास बैठे हैं सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, सेंटर पर जाते ब्राह्मण है, घर में जाते हैं कुछ, कभी ब्राह्मण कभी दूसरे मिलते ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं, अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवाइश आदि सब बदल दी है। पहले भारत में कितना रॉयल्टी से रहते थे, लेकिन जब दूसरे आने लगे तो उनको देख करके अपना सब रहन सहन बदल दिया। तो बाबा कहते सब क्या है, कुसंग में आकर हुआ। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवाइश आदि कैसे बदल दी है, देश वेश ही बदल दिया। रहेंगे अपने देश में और सारा कारोबार वेश आदि के रूप में ऐसे विदेश जैसा कर देते हैं। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है, देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है। बाबा के टाइम पर जापान से कुछ आए थे और वो उस समय तो बस कोई आई थी जो जापान की तरह थे, बाल भी वैसे बनाए हुए थे, बाबा उसको कहते जापान की गुड़िया आ गई। तो उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर हमने इस प्रकार से अपना करवाते हैं, बहुत खर्चा होता है, उस समय तो थोड़ा खर्चा था, अभी तो देखो कितना होता है। तो बाबा कहते हैं ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है, देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है, 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के, अभी तो हजारों देते होंगे, उस समय के बाबा के टाइम पर सस्ताई थी और बहुत भी, उस समय 100-150 भी बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू थी, 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए, इसको कहा जाता है अति देह अभिमान, परवाइश को ऐसे बना देना, रूप दूसरा बदली कर देना, क्या से क्या कर देना। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है अति देह अभिमान, वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बड़ा, बाबा हमेशा, बाबा के बच्चे सिंपल रहते हैं, उनमें रॉयल्टी होती है, बाहर वाले भी देख करके उनको समझते हैं कि इनके अंदर कितनी रॉयल्टी है, सफेद ड्रेस है, बहुत रॉयल्टी है। तो श्री बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आ जाता, एक तो देह अभिमान आता है, सब लोग उसको देखते हैं, फिर मौका ढूंढते रहते हैं ये भी उठा के ले जाए, कोई भी ऊंची चीज रखते हैं ना, पता ही नहीं पड़ेगा थोड़े टाइम में वो चीज भी गायब हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज तो लोगों के पास होती नहीं, उसको देह अभिमान हुआ और दूसरे कहीं उस पर बुद्धि गई, दृष्टि गई और उसको उठा के चल पड़ते हैं, ये भी तो होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। साकार बाबा के टाइम पर क्या किया था, पहले बाबा ने इतने रॉयल कपड़े दिए, इतने अच्छे अच्छे दिए, फिर देह अभिमान तोड़ने के लिए बाबा ने क्या किया, खादी के कपड़े देने लगे। तो जब जिनको आदत पड़ी हुई थी ऊंचा पहनने के, वो कहते थे बाबा ने ऐसा क्यों दिया, तो वो बनाते थे, तो बाबा भी देखते थे कितना देहभान है, कितना देहभान छोड़ा है। तो बाबा ने इसलिए कहा देहभान तोड़ने के लिए सब हल्का कर दिया, अच्छी चीज देह भान में लाती है, तुम इस समय वनवा में हो, हर चीज से मोह हटाना। वनवा समझते ना, भारत के अंदर पहले सिस्टम था, आजकल तो नहीं है, कि शादी से पहले लड़की को बहुत सिंपल इस तरह से रखते बाद में, ताकि जाकर के अच्छी लगे, तो वनवा भी सिंपल। तो बाबा कहते हैं तुम इस समय वनवा में हो, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है, शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ तो निभाना है। बाबा बच्चों को समझाते थे ऐसा नहीं है कि लौकिक में रहते हैं और रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है, और जहां जाते हैं तो जरूर ऐसा पहनो, लेकिन बुद्धि से डिटैच रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ रहना, फिर घर में आकर के उतार दिया, तुमको तो वाणी से परे जाना है, वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं, तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो, छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। आजकल तो छोटे बच्चों को सिखा दो वो माँ बाप को याद कराते, छोटे छोटे बच्चे आते ना यहाँ पर, वो बताते हैं, माँ बाप बताते कैसे छोटे छोटे बच्चे उनको बार बार याद दिलाते हैं, तो बच्चों को सिखा दो तो और पक्का कर लेते हैं, खुद भी सीखते हैं और उनको भी सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो, छोटे बच्चे को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है, बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास, अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अभी सुनेंगे हम धारणा के लिए मुख्य सा। पहला है, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई किदमतगार बनना है। वरदान, विशाल बुद्धि द्वारा विशाल बुद्धि विशाल दिल से। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन के अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। तो विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना ये देह है। मास्टर रचयिता की पहली रचना ये देह है, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वह अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपना अनुभव कराते हैं। उस आत्मा में संपर्क से सुख की दातापन की शांति प्रेम आनंद संयोग हिम्मत उल्लास उत्साह उमंग किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और हजार बाबा कहते एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और हजार श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का हजार गुना मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अच्छा, जो बहने या कुमारियां टीचर शांतिवन से आए एक हाथ रात के लिए हाथ खड़ा करो। शांतिवन में बट्टी तो पूरी हो गई, फिर बाबा के घर एक रात के लिए आ जाते हैं। जरूर आए, बाबा तो आप सबका स्वागत करते हैं, लेकिन आप जानते भी हैं कि मौसम भी ऐसा है, कभी कभी ये मौसम भी सूट नहीं होता है। और दूसरी बात भी सुनने में आती रहती है, कभी बरसात का मौसम होता है तो रास्ते का जो नीचे जाने के लिए नीचे से ऊपर आने के लिए कभी कभी रास्ता भी खराब हो जाता है, तो इस बात का भी सबको ध्यान रखना है। तो जो भी भाई बहने आए हैं नीचे शांतिवन से, वो भी ध्यान रखेंगे सभी का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। अच्छा, जो भट्टी वाले बैठे हैं, आज जाने वाले हाथ खड़ा करें। भट्टी वाले आज जाने वाले कितने बजे जा रहे हैं? कितने बजे जा रहे हैं? कल जाएंगे, अभी क्लास के बाद, नाश्ते के बाद। ठीक है, कोई है जो शाम को जाने वाला हो? नहीं, सभी नाश्ते के बाद जाएंगे। अच्छा ठीक है, ओम शांति।